नमो महापद्मनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी प्रणमामि हरे हा देवी काकू हर गद गदयाचा जाते विपत्त भोगि दंडवत अशादुद्वा गंधर्विके तव गणी अंग श्यामलिम छटाभिरभितो मंदीकृतेन्दीवरम जाटंजागुडरोत्सम पट्टंबरस्य बृंदारण्य निवासिनं हृदि लसद्धामाभिरामोदरं राधास्कन्दनिवेशितजलं ज्ञानेन्द्रं भक्त्याभिन्नाय परादलक्ष्मी चित्ताश्च कामाभितरङ्गमध्ये कृपामये त्वं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय कदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय यं प्राप्तजनितमन्ते तमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिः तं सर्वभूतहृदयं नजुहामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तं मां शरणं
पांच व्याख्या के संबंध में हमने बताया जन्मादर्श जता जिससे ये जन्म अब ये जिससे ये पांच उसके अर्थ पहला कृष्ण दूसरा राधा कृष्ण तीसरा कृष्ण राधा श्रीमती राधिका चौथा भक्ति पांचवा भागवत। अब ये पांच जो बतलाया जन्म जिससे हुआ इसको मूल कर्ता मान करके इसी के अनुसार में सबकी व्याख्या होगी। सब शब्द जितने इसमें हैं वो सबकी व्याख्या तेनी ब्रह्म हृदय आगत भाई ब्रह्मा जी के हृदय में जो शब्द ब्रह्म रस ब्रह्म इत्यादि का जो अर्थ कितना है वो उसी तरह पांच और पांच भी उसका भी होगा अन्य और व्यतिरेक से जिनका जन्म हुआ वो भी पांच और ब्रह्म शब्द का अर्थ भी वही पांच तीन जो विनिमय है वारी मृदंग
तेजो
वार मृदंग जत्र विनिमय वो भी पांच प्रकार का और ये तीन को तीनों जो है पांच प्रकार का जैसे द्वारका मथुरा
वृंदावन
चित शक्ति जीव शक्ति माया शक्ति लादनी शक्ति संभी शक्ति और संदिनी शक्ति
अंतरंगा बहिरंगा चित शक्ति
अच्छा मथुरा द्वारका और
वृंदावन
ये सब उसमें व्याख्या में आएंगे पांच प्रकार की व्याख्या में पांचों प्रकार के लगे
नहीं एक तो तत्व दर्शन सृष्टि तत्व विषय दूसरा है कृष्ण तत्व विषय तीसरा है लीला विषय
ये भी है
रस विषय लीला विषय में रस विषय और फिर चौथा महाप्रभु जी विषय पांचवा
जैसे अब मान लिया कि अर्थ किया भक्ति, जन्मादस्य जत, भक्ति से जिनका जन्म हुआ या किससे भक्ति पैदा हुई,
मतलब भक्ति पर अगर अर्थ लिया जाए
तो वो कैसे हुई, नारद आदि भक्ति के पास वही अनुवाद व्यतिरिक्त रूप में भक्ति को कैसे प्रकाश करते हैं, किसी को अभी संपाद किया जमलार्जुन को, ये व्यतिरेक अन्य रूप से पीछे से उनको कृपा करके कहा जैसे कृष्ण तुम्हारा उद्धार। इसी तरह से चित्रकेतु महाराज जी के उपाख्यान की अवसर रूप है अन्वय और व्यतिरेक दोनों रूप में भक्ति उनके द्वारा प्रकटित होती है और वही इस विषय में भक्ति के संबंध में वही अभिज्ञ है स्वराट है भक्ति के विषय में जिस पर वो कृपा कर सकते हैं। तेने ब्रह्मरिदा हृदय में उन्होंने व्यास जी के हृदय में शब्द ब्रह्म को अर्थात भागवत को प्रकाश किया, नारद जी ने तो किया भक्ति के द्वारा व्यास जी के हृदय में। तेने मोहयंत जत सूर्य जिसमें वशिष्ठ इत्यादि जितने हैं लोग मोहित हो जाते हैं और तेरे जो बार मृदांग जत्र विनिमयो कृष्ण और राधा जी के संपर्क से वो वैसे ही हो जाते हैं जैसे मट्टी तरल हो जाती है, पर्वत तरल हो जाता है और जमुना नदी तो ऐसे ही इन लोगों की भी भक्ति के द्वारा इनकी भी अवस्था हो जाती है कृष्ण के लिए अष्टसात्विक विकार इत्यादि इनको होने लगते हैं। ऐसे सत्यम परम धीम ही ऐसे जो नारद इत्यादि के द्वारा जो भक्ति है, ये भक्ति जो है सत्यम परम परम सत्य है ये भक्ति। उसी तरह से आप भागवत के लिए भागवत के द्वारा भी वैसे ही पांच प्रकार के अर्थ, इसी तरह से सबका अर्थ अलग अलग हमने बताया, उसको हम लोग यहाँ पर एक दिन दो दिन तीन दिन चार दिन इसमें व्याख्या में हम लोग उसको बतलाने की चेष्टा। ये जीव गोस्वामी और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने इसका सुंदर सुंदर इस तरह से प्रतिदिन कुछ न कुछ नवीन स्वभाव आते थे और उसके अनुसार में चले। आज हम लोग इसको हटा देते हैं, बृहद भगवत अमृता जो बच गया था
रसायन का,
अब थोड़ा सा बच गया था 10-15 श्लोक जो सनातन गोस्वामी जी बतला रहे हैं। ये भागवत का ही एक क्या कहते हैं करने वाला परिशिष्ट जो उन्होंने अपनी मैया को तो उसमें थोड़ा सा ये बाकी रह गया है। अब हम लोग कल से अभी उसका वर्णन करेंगे, आज समय हो गया है श्लोक का पाठ कर देते हैं। गोप्यस्तपः किमाचरन् जतमुष्म रूप लावण्य सार असमोत्थनन्य सिद्ध दृग्भि पिबन्त अनुसवाभिनवम दुराप एकांत धाम जसस श्रिय ऐश्वर्यस्य। ये श्लोक है दशम स्कंद के 44वां अध्याय का 14वां श्लोक। जिस समय कृष्णचंद्र जी को बलदेव जी को अक्रूर जी मथुरा में लाए, जहाँ हम लोग बैठे इसी जगह लाए, कुबल्यापीड के द्वारा पहले मारने की चेष्टा की, उसके रक्षकों के द्वारा मारने की चेष्टा की, कृष्ण ने सबको सबका वध किया। चारण मस्तक का जब उनसे साथ में दंगल हो रहा है, परस्पर लड़ रहे हैं, कुश्ती कर रहे हैं, उस समय में वहाँ की जो महिलाएं हैं वो महिलाएं देख करके बड़ी दुखित हुई और दुखित होकर के कह रही हैं इस सभा में अधर्म प्रवेश किया है। इस सभा में जितने लोग हैं वो जो इसका समर्थन करते हैं वो तो अधार्मिक ही हैं, जो समर्थन भी नहीं करते यहाँ पर हैं उसको देख रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, उनको भी अधर्म इस सभा में रहना उचित नहीं है। इसके बाद में वहीं पर गोपियों की महिमा का वर्णन कर रहे, उसी के लिए बतला रहे हैं गोप्यस तप की मां आचरण जब अग्नुस्वरूपम लावण्य सार असमोधन निष्ठम गोप्य तप गोप्य किम तप आचरण, इसको ऐसे लो गोप्य हे गोपियों, नहीं गोपियों ने गोप्य माने गोपियों ने किम तप आचरण,
कौन सी
तपस्या की थी जो कृष्ण का ऐसा लावण्य का जो सार असमूर्ध और स्वयं जो अपने आप उनका सौंदर्य निखर रहा है उसको दृग्भी पिवंती आंखों के द्वारा उसका पान कर रही है, पिवंती पिवंती मैंने क्या
पान कर माने
कितनी गोपियां भूतकाल की क्रिया है ना, भूतकाल के नहीं है। अच्छा तो ये अभी भी पी रही हैं, माने क्या पिया था जब कृष्ण आए थे उस समय की बात नहीं कह रहे, जिस समय में मथुरा में गोपियों के सामने रमणियों के सामने माथुर रमणियों के सामने कृष्ण आए हाथी का वध करके चारों मुष्टिक से भिड़ गए हैं उस समय में गोपियां पी रही हैं नहीं, तो नहीं
नित्यकाल
पी रही, इसलिए आज के दिन भी जो हम लोग पढ़ रहे हैं उस काल के लिए भी ये पी रही और आने वाले वर्तमान काल में भी उस समय भी पी रही हैं, इसलिए कृष्ण की लीला वो जो लीलाएं हैं नित्य हैं, ये पहली तो ये बात अभी भी पी रही हैं। अब क्या तप आचरण किया, एकादशी में निर्जला रह करके इस जेठ की दोपहरी में, कल आएगी नृसिंह चतुर्दशी ना, शाम तक निर्जला रह, ये एक तपस्या है। इस तपस्या से गोपियों ने पूर्व जन्म में किया था इसलिए कृष्ण का यह रूप अपने आंखों से पान कर रही हैं। ध्रुव जी ने कठोर तपस्या की थी ना, बिना खाए पिए 6 महीना, तो इससे गोपियों ने भी ऐसे की थी। महाराज कश्यप जी ने, अदिति ने, तृण और धरा ने भी बहुत कठोर साधन किया, तपस्या की। उस तपस्या से इसलिए गोपियां आश्चर्यचकित होकर के ये विचार कर रही हैं, ऐसी ऐसी तपस्याओं से कृष्ण का यह रूप जो लावण्य सार, लावण्य माने क्या, जो मोती से अपने आप लावण्य निकलता है,
कांति,
कांति जो निकलती है, काला कोई बात नहीं, काले में यदि कांति हो उसमें सौंदर्य जाता है। कृष्ण तो श्याम वर्ण के, किंतु लावण्य ने उसको बना दिया अत्यंत सुंदर। लावण्य सा असमोर्थ असम, जिसके बराबर कोई कोई रूप नहीं, देवताओं की तो बात क्या, अस्पराओं की बात क्या, भगवत अवतारों की बात क्या, जो अवतारी हैं कृष्ण द्वारकाधीश इत्यादि या मथुरेश कृष्ण है, ये भी हैं अवतारी हैं ये, किंतु अनन्य सिद्ध नहीं है। और भी दशरथ के उपास्य हैं वृंदावन में भी, शखरस के उपास्य हैं वात्सल्य रस के भी उपास्य, किंतु अभी अनन्य सिद्धता नहीं आई। ये कहा है कि ये अनन्य सिद्धता गोपियों के बीच में यदि ये खड़े हो बैठे हो उनके साथ में हो तो ये असमर्थ होगा। यशोदा जी के साथ में कृष्ण बाल्य लीला में यशोदा जी बांध रही हैं और कृष्ण रो रहे हैं, उस समय कृष्ण का जो रूप होगा कैसा होगा, होगा तो सुंदर कि नहीं होगा, असमर्थ नहीं, ये विचार करो, असमर्थ नहीं होगा। उससे बल्कि गोपियां सब चारों तरफ में भरी पड़ी हैं, चारों तरफ से अपने अपने वो पितम अपने अपनी ओढ़नी के ऊपर में आसन लगा करके बैठा दिया है और चारों तरफ में गोपियां बैठी हैं। और उस समय में सब गोपियों का कृष्ण के प्रति जैसा व्यवहार हो रहा है, कृष्ण मंद मंद मुस्कान कर रहे हैं, बंसी को यहाँ पर रख दिया है और वही माला वही पीताम्बर पहन करके गले में पीताम्बर लपेट दिया, दीनहीन होकर के वहाँ पर मुस्कुराते हुए लज्जा से बैठ गया। यह कैसा रूप है? मनमत ये असमर्थ है, ये असमर्थ। ऐसे रूप जो हैं श्रीमती राधिका जी के साथ में कृष्ण का गठबंधन कर दिया है और उस समय में गोपियां ताली बजा करके हंस रही हैं, उस समय कृष्ण का जो रूप है ये अशुभ। बहु कारण एक कारण जिसके लिए हमने रास प्रकट किया है वो रास समाप्त हो जाने जा रहा है। क्यों? ये होगा बाम्य भाव के साथ ही नाश होगा, दक्षिण भाव आने से ही बस रास समाप्त खत्म हो गया। अरे इसको तो देख रहे हैं कि अब तो आ गया दक्षिण भाव, आज तक जिस विषय के लिए पाने के लिए जिसको रसास्वादन करने कृष्ण अभी तक ललक रहे हैं, हजार चेष्टा करने में भी गोपियाँ दूर कर दी, आज वो सब अपने आप दे रहे हैं।
गोपियों के अंदर में दक्षिण भाव आ गया,
इसलिए
कृष्ण अंतरित किए थे,
रस खत्म, रस ही खत्म हो गए, इसलिए जल्दी से जल्दी ये तत्व होने से तो फिर ये सब गड़बड़ है, ब्रज लीला ही चौपट हो जाएगी।
अब ये प्रश्न है कि जत्ते सुजा,
अब प्रश्न है आप पीछे दूसरे दिन हम लोग बताएं, आज यही हम लोग रख दें बस। तो ये सब तपा की माचरण, कौन सी तपस्या की? ये साधारण तपस्या से नहीं होने का। एक गोपी से, अच्छा बतलाओ तो तुम बतला सकती है जी, इन गोपियों ने मथुरा की रमणियों से पूछ रही है, बतला सकती हो ये कौन सी तपस्या से गोपियों को ऐसे कृष्ण का असमोर्ध अनन्य रूप का आस्वादन करने का, पान करने का ये अवसर हुआ? हम लोग जिस रूप का आस्वादन कर रहे हैं, है रूप लावण्य भी है, सब कुछ है, किंतु असमूर्ध नहीं है। कृष्ण इस समय कुछ क्रोध में है, मुखारविंद का लाल हो गया है, कुछ क्रोध आ गया है, रस का प्रकाश नहीं होकर के अब केवल वीर रस, और सब रस आच्छादित हो गए, इन्हें देख तो रही हैं हम परतंत्र हैं, और गोपियां कृष्ण के उस स्वतंत्र रूप को जो असमर्थ रूप था उसका पान किया था। अच्छा बतला सकती हो उनकी ये तपस्या कैसी थी, कौन सी तपस्या है? और ये तपस्या का महत्व क्या है, किम कैसे आचरण किया? यदि हम लोग जान लें तो हम भी ऐसी तपस्या का आचरण करेंगे जो कृष्ण के ऐसे असमर्थ रूप का हम लोग भी ये जानने के लिए कह रहे हैं, और बाकी अगले दिन करेंगे। आज मंचा कल्पतरुभ्यश्च
पंचाकुभ्युभ्य पति पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो महाबदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य कृष्ण सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत कांत नमस्ते तत् कंचन गौरांगी हे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हा देवी काकूवर गदगदयाच जाचीपत्यभूमि दंडवत भटरुपी अंगश्यामलिं छटाभिरभितो मन्दीकृतेन्दीवरं जड्डं जागुडुरुचिसं विदधतं पट्टम्बरस्य श्रीणा आरण्यनिवासिनं हृदिलसत्तामाधरं राधास्कन्दनिवेशितो ध्यायेन् भक्त्या विन्नापराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयुक्तां शरणं प्रपन्ना वन्दे नमस्ते गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै कृष्णभक्ताय यं प्रभृजन्तं द्वैपायनो विरहकातर्यायुः पुत्रेति तन्मूर्तया सर्वोभिनि तं सर्वभूतहृदयम् तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधिकं मे मां भजामि राधामहिन्दनित्यं स्मरामि राधामधुरस्मिता वदामि राधां करुणाभरा ततो मम नास्ति बृहद्भगवतामृतम् द्वितीय खंड सप्तम अध्याय जादो हने वहनने मथलो पले प्रंखनार भरोहितो खन मारिनाद गायन्ति चैनम अनुरक्त थियो अश्वकंठ्या धन्या प्रजस्त्रिय कुरुक्षम चित्तया। साधारण अर्थ मैंने बतलाया है कि गोपियां कृष्ण के प्रति अनुरक्त होकर अश्रुपूरित कंठों से कृष्ण के लीलाओं का और नामों का गायन करती हैं और गुरुकम चित्त जाना सब समय गुरुकम को कृष्ण को अपने चित्त पर आरूढ़ रखती हैं। गुरुक्रम माने तीव्र अत्यंत तीव्र जिनका गुरुक्रम है अर्थात एकदम क्रम को छोड़ करके कहाँ से कहाँ पैर उठा लिए, उसी तरह से गोपियों का जो अनुराग है वो कैसा है, गुरुक्रम क्रम रूप कोई क्रम नहीं, एक समय साथ साथ एकदम उनका अनुराग बढ़ जाता है और गला रुद्ध हो जाता है, आंखों से अश्रु विगलित होने लगते हैं। ओह ये ब्रज की स्त्रियां ही कह रहे हैं कि कब ऐसा होता है, तो उसी को कहते हैं दो जादो हने वहनने मथलो बले, इसी को कहते हैं देह और दैहिक दोनों को विस्मित होकर के कृष्ण के में अपने चित्त को लगा लें। गीता में कहा गया किंतु इसका कोई उदाहरण नहीं दिया गया और भागवत में उदाहरण दे करके कहा उद्धव से कृष्ण करें मदगत चित्ता, उनका चित्त हमारे अंदर मदगत चित्ता काम मन मनस का मदर्थे तैक्त दई भगा, ऐसे ये गोपियों का ये वर्णन करते हैं। अब यहाँ पर वर्णन कर रही हैं मथुरा की रमणीय जो ऐसा उनका कोई भी लौकिक कार्य नहीं है, जब अनुरक्त होकर के कृष्ण के को चिंतन करते हुए उनका गायन नहीं करते। अब इसको हमारे सनातन गोस्वामी जी कहते हैं कि पहले श्लोक में हम लोगों ने ये देखा था, गोप्य तप किमाचरण जपद्मोस्म रूप लावण्य सार असमर्थ अनन्य सिद्धम दृग भी पिबंत। आँखों से पीती हैं कृष्ण के जहाँ लावण्य सार जो रूप है, रूप माधुरी को पान करती हैं आँखों से, और साथ साथ में आँखों से कृष्ण के रूप को तो पान करती है और कानों से उनकी वंशित ध्वनि सुनती है। पिबंत अनुसवा नित्य निरंतर उस आश्रम को पान करती हैं। आश्रम माने मध्य को पान, जैसे मद्यपान जितना ही अधिक करते चले जाएंगे उसकी बुद्धि लोप होती जाएगी, ठीक तरह से ऐसे ही उनका दुराप, दुराप माने जो दूसरों के लिए कठिन है, क्योंकि गोपियों में ही ये महाभाव है, दूसरों में नहीं, जिसमें प्रेम नहीं है कृष्ण का रूप, उनकी वाणी, उनकी मधुर ये मुरली कान, ये कभी भी कोई नहीं पान कर सकता, इसलिए गोपियों के लिए ये संभव है। ये कहा संयोग अवस्था में, अब ये कह रहे हैं योग अवस्था। कुछ लोग कहते हैं कि हम लोगों के शास्त्र में बतलाया गया जे विरही विपरलंब भाव ही मुख्य है, यही सबसे श्रेष्ठ, तब तो गोपियाँ यही हम भी प्रार्थना करेंगे जे हे भगवान आप ऐसी व्यवस्था करें जो राधा से कृष्ण कभी न मिले थे और वो वियोग में कृष्ण भी तड़फें और वो भी तड़फें, और ये भी हमको आज हमसे कभी नहीं मिले, वियोग में मैं तड़पते तड़पते जन्म लूँ और फिर मर जाऊँ और फिर जन्म लूँ मरूँ, किंतु आपके साथ में दर्शन हो भी प्रलंबी हमको बना रहे, ऐसे ही प्रार्थना करना पड़ेगा। इसलिए ये जो कहते हैं उस चीज़ को समझते नहीं हैं, कोई भी गोपी कोई भी कृष्ण भी राधिका भी जिससे प्रेम है और उससे हम वियोग चाहेंगे, यदि वियोग का काम में और वियोग शेष हो गया, इसलिए वही श्रेष्ठ है। नहीं, वो कितना श्रेष्ठ है, एक बटा तीन, और तीन बटा चार जो है वो मिलन है, क्योंकि कृष्ण का वियोग गोपियों के साथ में 3 महीना होता है, 3 महीने के लिए मथुरा द्वारका जाते हैं। कोई भी साधक या सिद्ध ये नहीं चाहेगा कि राधा जी को कृष्ण से वियोग ही हम में तड़फाते रह जाए, कोई भी नहीं चाहेगा ऐसा कहीं नहीं, केवल उसकी पुष्टि के लिए जितना आवश्यक है 1/4 भाग चौथाई भाग बस इतना। इसलिए सनातन गोस्वामी ने भी वर्णन किया है जो गोलोक वृंदावन में कृष्ण का वियोग केवल 3 महीने के, और वो केवल किस लिए है, इसलिए कि उनका जो मिलन है यह परिपूर्ण रूप से हो, वो इसलिए है कि जितना वियोग कुछ अधिक होता है उसके बाद का जो मिलन होता है वह सरस और मधुर होता है, इसलिए वो पुष्टिदायक। हम अभी खाया ना, खाना तो पसंद करते हैं, भूखा रहना कोई चाहता है संसार में, जब भूखा रहे, कोई ऐसा विश्व में है जो चाहता है जब मैं भूखा ही रहूं? भूख किस लिए है, इसलिए जिसको खाएंगे वो प्रीतिपूर्वक खाएंगे, इसलिए हम गैप दे करके भोजन करते हैं। यदि यह गैप नहीं दिया जाए
अभी मैं खा करके रसगुल्ले मलाई राबड़ी खा करके आया और फिर साथ ही साथ में एक मिनट के बाद में बैठ जाएंगे तो खाएंगे क्या करें। और यदि खा लिया तो पेट गड़बड़ जाए, अस्वस्थ हो जाए। अच्छा, इसके बाद में ऐसा करो जब खा लिया ना अब भूख लगने, जब भूख लग जाएगी तो फिर खाएगा तो क्या होगा, अच्छा लगेगा, शरीर भी स्वस्थ रहेगा। इसलिए वियोग की आवश्यकता है भूख बढ़ाने के लिए। यदि ये वियोग नहीं रहेगा तो भूख नहीं लगेगी और भूख नहीं लगेगी तो खाएंगे तो खाने की चाहिए नहीं रहेगी, इसलिए उसकी इसलिए इसलिए उसकी पुष्टि के लिए बस इसकी जरूरत। ऐसा नहीं कि नहीं वही श्रेष्ठ है, ऐसा नहीं,
भूख ही श्रेष्ठ है, भूखे मर जाना,
हाँ भूख है मर जाना अच्छा है, क्योंकि वो भूख बढ़ाता है ना, शरीर स्वस्थ भी रख देता है। इसलिए भूख, इसलिए भूख अब हम कभी जीवन में नहीं खाएंगे जब तक कि मर नहीं जाएंगे। ये तो हमारे लोगों के लिए काम में नहीं है, इसलिए वियोग काम में नहीं है, किंतु वियोग होता है। ये कौन कैसे वियोग हो जाता है, जोग माया के प्रभाव से कृष्ण कराते हैं। यद्यपि इष्ट नहीं है तो भी खाने की हमारी लालसा बनी रहे, इसलिए तो उसकी जरूरत। इसी तरह से ये समझो, इसलिए पहले का संजोग का की बातें बताइए, उनको कितना आनंद होता है कृष्ण के मिलन में। आँखों से मानो पी रही हैं कृष्ण का रूप और कानों से पी रही हैं उनके मधुर वचन और ये बंसी की ध्वनि। अब ये करना है किसको, साधक जो होगा संजोग की बातें भी स्मरण करेगा और वियोग की बातों को भी स्मरण करेगा और उसमें अपने चित्त को निविष्ट कर देगा, तब ये साधन होगा। अब इनको साधक ही समझ लो, किनको, ये जो मथुरा की रमणीया, किंतु अपने चित्त को उसमें समरूप में समाधि में समाधि नहीं कर पा रही, इसलिए उनको दुख है, इसलिए वो दुखित होकर के वो कह रहे हैं। हम लोगों के लिए गोपियों को जैसे मिलन में सुख होता है, हम तो यहाँ मिली हैं मथुरा में अभी आई हैं और कृष्ण भी मिले हैं, किंतु वहाँ पर गोपियों का जैसे मिलन होता है, कैसे, कृष्ण के घर में चली, यशोदा मैया के घर में चली गई गोपी, हम जा सकती हैं, नहीं जा सकते, हम तो केवल यहीं पर सीमाबद्ध हैं देखती हैं और यहीं से भाव नेत्र से देख रही हैं गोपियों का मिलन। इसलिए कहती हैं कि हम लोगों के लिए यह संभव नहीं है कि जो एकांत श्री जश और ऐश्वर्य का जो धाम है, क्या कृष्ण का जो मुखारविंद है, उनकी रूप माधुरी है, हम आंखों से देख नहीं पा रहे। अभी कृष्ण कुछ क्रोधित हैं, तम तमा रहे हैं, एक भाव में वीरस में यहाँ पर आप हंस तो रहे, मुस्कुरा तो, मुँह का मुँह की बनावट ही ऐसी है ना, मुस्कुराहट होती है उनके मुख में अपने आप, उनको मुस्कुराना नहीं होता। किसी किसी का मुख देखा है ना, जरा जा खोल दिया तो थोड़ा सा यहाँ पर गड्ढा हो गया और अपने आप मुस्कान उसमें से निकल जाती है, प्रयास नहीं करना पड़ता। कृष्ण जय ही मुख खोलेंगे ना तो देखेंगे मुस्कुरा, इसलिए क्रोध की स्थिति में उसे युद्ध कर रहे हैं और उस समय में थोड़ा सा श्वास खींचते हैं या कुछ, मुस्कुराहट अपने आप आ जाए, किंतु क्रोध मिश्र। इसलिए कहती है हमारे भाग्य में ये नहीं बताया जो कृष्ण के इन रूपों को देख सकते। वो गोपियाँ केवल मिलने में ही नहीं, विरह में भी उनकी ऐसी दशा देख, उसी के लिए ये बतला रही हैं। विरह में क्या कर रही हैं, श्री कृष्ण के लिए माला ग्रंथन कर रही हैं, कृष्ण चले गए हैं सवेरे 8 बजे 8:30 बजे गोचारण में, और वो गोपियां घर में हैं। उसमें जहाँ वृंदावन की सीमा थी वहाँ तक तो गई, और फिर वहाँ से लौट आई घर। घर में क्या करती हैं? किसी काम में मन नहीं लगता, या जो काम करती हैं आवेश होकर के नहीं करती, किंतु कृष्ण में चित्तावेश है। रसोई में ये जल जाए वो दे दिया, और कब उसको उतारना चाहिए ये होश में। दलिया पका रही हैं, रोटी को दे दिया तवे पर, अब रोटी कितने दिन में वो पलटने लायक होगी अब ये ज्ञान नहीं, किंतु पलट कैसे रही है रोटी? अभ्यास से कहो जोग माया पलटा रही है, उनका काम जोग माया कर रही है उनका ये सब जितना काम, नहीं तो घर वाले ताने देंगे, डांटेंगे और सब करेंगे। इसलिए उन कामों में आवेश नहीं है, कृष्ण में उनका आवेश है, किंतु वो काम भी सुचारू ढंग से हो रहा है, इसलिए कि कृष्ण के लिए निमित्त वो कर रही हैं, इसलिए संसारी कार्य भी उनकी गड़बड़ी ना हो जाए, कोई उनको ताना सुना दे, उनको विघ्न दे। हम लोगों को यदि कुछ भी ना करें तभी घर वाले विघ्न बाधा डालें। मान लें कि हम ही हैं यहाँ, मान लें कोई काम नहीं देखे, बस माला लेकर के बैठे रहें या पुस्तक में, किसी से बात नहीं करें, कुछ भी ना करें, यहाँ का कुछ भी ना देखें, लोग कहेंगे ये तो निकलते नहीं, किसी से बातचीत नहीं करते हैं, बस परिणाम। और जो परतंत्र हैं, जो गृहों में हैं, या लड़कियां हैं या स्त्रियां हैं या पुरुष हैं, उनको तो पागल करार कर देंगे, ये पागल। इसलिए जोग माया के द्वारा उनके समस्त कामों का निर्वाह कृष्ण ही करा रहे हैं, ऐसे समझो। तो वो माला गुथ रही हैं कहाँ? जब कृष्ण चले गए तो, अथवा गाभी दोहन कर रही हैं, गायों को दोहन कर रही हैं, झाड़ू लगा रही हैं, पोछा कर रही हैं, बच्चे को थपथपा करके सुला रही हैं, झूलन है, बच्चा रो रहा है ना तो झूले पर पढ़ा दिया, और लोरी गाते हुए थपथपाते हुए और उसको थोड़ा सा चला दिया, तो बच्चा थोड़ा सा आनंदित होकर के धीरे 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 तो ये सब जो कर रही हैं क्यों कर रही हैं, कारण का कारण क्या है? यदि कृष्ण ही में चित्त निविष्ट होता तो ये सब बातें करने की क्या जरूरत है? आ रहा है समझ में? उनके घर के कामों में कुछ क्यों चित्त लगा रहे हैं, क्यों? यदि कृष्ण में तो उनको बावरी होकर के बस जैसे भूत सवार हो गया ऐसा होना चाहिए, किंतु नहीं तो घर का काम विधिवत जितना है सब कर रहे हैं, उनके लिए बाधा नहीं है। यही सिद्धों का है, जोग माया सब समाधान कर देती है, विघ्न बाधा नहीं आएगी। और साधकों के लिए क्या है? इसमें बाधा है, इसलिए कहते हैं भाव अवस्था में निर्विघ्नम अनुपागत, निर्विघ्नम अनुपागत माने क्या? विघ्न भी पूर्ण रूप से पूरे नहीं, दूर नहीं हुए हैं। अब प्रेमावस्था में क्या होता है? संपूर्ण रूप से विघ्न दूर हो जाए, वो सब जितने क्लेश हैं, विघ्न बाधाएं हैं, इसलिए साधक अवस्था में अभी कुछ पहुंचने पर सिद्ध अवस्था में अभी साधक का कुछ भाव था, इसलिए उन लोगों को गोपियों जो कि दंडकारण्य इत्यादि वाली थी उनको बाधा आई, और नित्य सिद्धाओं का ये सब विघ्न बाधा। अभी भी इस जगत में भी जो साधन में बहुत थोड़ा सा ऊंचा हो गया है उनको विघ्न बाधा नहीं आती। सुखदेव गोस्वामी को क्या बाधा विघ्न आएगी? भूख प्यास लगेगी न, संसार की कोई कामना सताएगी न, क्रोध आएगा न, क्या होगा? उनको कोई आदमी कोई बाधा दे सकता है? और हम लोगों को
अभी भूख प्यास सिर में दर्द शरीर का अस्वस्थ होना बाहरी लोगों के द्वारा चित्त चंचल अभी सब क्योंकि साधन नहीं है ऐसा। जब भक्ति क्लेशक नहीं हो जाएगी तब उसके साथ विघ्न दूर हो जाएगी, इसलिए अभी छटपटाओ मत विघ्नों को देख करके, मत छटपटाओ, धैर्य धारण करके चलो भक्ति का साधन करो, साधन से विघ्न दूर होते चले जाएंगे, चित्त स्थिर होता जाएगा, सब अपने आप। तब इन गोपियां जैसा ये है ना, कोई भी विघ्न नहीं रह जाएगा, वो जो विघ्न जैसा आ रहा है वो क्या है, कृष्ण के प्रेम के तरंग को बढ़ाने के लिए, तरंग उत्पन्न करने के लिए, उस समय सत्य असाधक अवस्था में अभी विघ्न है। गोपियां दोहन कर रही हैं और दोहन करते 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 कृष्ण के भावों को हृदय में ले करके और कृष्ण को साक्षात देख रही हैं, ये दूध काटते हुए कृष्ण धार उसके द्वारा राधा जी के मुखमंडल पर छोड़ दिया और राधा जी कुपित होकर के उनके तरफ में बंकिम दृष्टि से देख रही हैं और चल भी रही हैं। इतने में पैर उचक गया और वो थोड़ा सा गिरने का भाव आया, उनकी माला टूट गई और फिर रोने लगी, उसको माला को माला के मणियों को दूसरी सखियां भी मैंने माला तो बड़ी मजबूत धागे से तैयार की थी, ये कैसे टूट गई, इस तरह से वही चिंता कर रही हैं। कोई भी बात होती है झाड़ू दे रही हैं कृष्ण का जी। हम लोगों को जोर जबरदस्ती अंधी करने के समय में कृष्ण का एक ध्यान जरा था और कृष्ण बैठे हैं बाम दिशा में, राधिका जी बैठी हैं वृंदावन धाम में राधा कुंड में बैठे, यही ध्यान नहीं आता, इसको बात छोड़ दो, चित्त को शून्य कर दें और कोई भी बात न आए बस मंत्र जपें, मंत्र के अक्षर ही दर्शन करें, ये भी नहीं होता, लाखों चिंताएं लाखों भावनाएं उस समय में हृदय आ रही, मतलब कहाँ उनका कहाँ हमारा, इसलिए साधक इन्हीं से लीलाओं का मनोहर लीलाओं का सब समय कीर्तन करेगा, जो एक मिनट भी चित्त चुप न बैठे, इसको कहते हैं साधक या साधन कहते हैं भावावस्था को पाने के लिए। कभी वो साक्षात कृष्ण का दर्शन करती हैं और कभी जब कीर्तन करने लगती हैं उन लीलाओं का, उनके लिए कोई पद को नहीं गाती हैं, किसी का बंधा हुआ या अपना बनाया हुआ वो उस पद को नहीं करती, क्या करती हैं उसी समय में, जब जैसे कि इसमें बतलाया ये रासलीला में पराशर जी ने कहा है किसी अपने ग्रंथ में कि रासलीला गोपियों के बीच में कृष्ण मध्यमनि है और राधा जी मध्यमनि, मध्यमनि मैंने लाखों गोपियों के बीच में कृष्ण है, सब लाइन देकर के गोलाकार उन्होंने बनाया मंडलाकार, उसमें कृष्ण है और राधा जी बीच में ही मध्यमनि है और चारों तरफ में गोपियां हैं, कृष्ण अपने नित्य कौशल से एक एक गोपियों के बीच में दो दो गोपियों के बीच में एक एक हो रहे हैं। उस समय में कृष्ण गान करते हैं, कोई गान करते हैं कौमुदी कुमुदाकरम, कौमुदी कुमुदाकरम, अब उसमें और भी पद हैं और इसको ये गाए, गोपियों ने क्या किया ठीक इसी के रूप में कर दिया, जो चंद्र हैं कृष्ण चंद्र हैं उनकी कौमुदी निकली और ये कुमुदनियाँ हैं उनको आनंद से भर देते हैं, और कौमुदी कौन है, कौमुदिनी साथ ही साथ में जोड़ करके नया बनाया और उसको कृष्ण जी स्वर स्प्रे कर रहे हैं, पंचम कर रहे हैं तो वो सप्तम के रूप में, सप्तम कर रहे हैं तो उसमें ध्रुपद धमार इत्यादि लगा करके दूसरे दूसरे तालों से मूर्छना और वो आरो इत्यादि के रूप में उसका दान करती हैं। और कृष्ण कहते हैं फिर
साधु
साधु साधु। इस तरह से ये गोपियां, अब इसको ये भाव नेत्र से देख रहे हैं, हम लोगों के लिए संभव होगा। तो ये साक्षात रूप में उन्हीं ज्ञान जब करने लगती हैं, कृष्ण गोचारण करने चले गए हैं, घर में ये झुंड की झुंड अपने अपने स्वजातीय गोपियों के साथ में बैठी हैं। चंद्रावली जी की अलग, श्यामला जी की अलग, भद्रा जी की अलग, ललिता विशाखा जी की अलग, अपने अपने गणों के साथ में कोटि कोटि घरों में कोटि कोटि गोपियाँ तन में होकर के जब ये किया न कौमुदी कमुदा करम, बस भाव में बस वही भाव आ गया और साक्षात रूप में देखा जय कृष्ण हम लोगों के साथ में। इस तरह से ये मथुरा वाली नहीं सोच रही, ये कौन सोच रहा है, हमारे सनातन गोस्वामी जी रति मंजरी सोच रहे हैं, लवंग मंजरी सोच रहे हैं। तो अब उस समय में कृष्ण आ जाएंगे कि नहीं, जिस समय में ये कीर्तन करती हैं साक्षात रूप में आ जाते हैं। और कभी अनुभव के विषय माने स्फूर्ति जैसे देखती हैं, जैसे साक्षात रूप में कैसे देखती हैं, कृष्ण कहते हैं कि मैं आ जाता हूँ, नारायण की मैं सेवा करता हूँ इसलिए मैं